अध्याय 12। एक आदमी छज्जे पर पहरा दे। रणवीर ने घूमकर कहा। मुर्गी काट कर दीक्षा पाने से उसमें भरपूर आत्मविश्वास पैदा हो गया था। वह दल का सबसे चतुर, सबसे चुस्त और सबसे ज्यादा कार्यकुशल सदस्य था। उसकी आवाज में कड़क आ गई थी। लाठियां, कुल्हाड़ी, छुरे, तीर कमान और गुलेलें, इन हथियारों के बावजूद शस्त्रागार खाली खाली लग रहा था। कमरे के बाहर सीढ़ियों से थोड़ा हटकर चूल्हे पर तेल का कड़ाहा रखा था, पर लकड़ियां कम पड़ जाने के कारण तेल को उबालने का विचार कल ही छोड़ दिया गया था। जो आज्ञा सरदार, शंभू ने कहा और छज्जे पर चला गया। चारों योद्धाओं के दिल कसमसा रहे थे। रणभूमि में उतरने का और अपने जौहर दिखाने का समय आ गया था। छज्जे के पीछे खड़े वे वैसा ही महसूस कर रहे थे जैसा चट्टानों की आड़ में खड़े राजपूत नीचे हल्दी घाटी में आने वाले मलेच्छों का इंतजार करते हुए महसूस करते रहे होंगे। मलेच्छों पर टूट पड़ने का वक्त आ गया था। सरदार, रणवीर ने घूम कर देखा। मनोहर खड़ा था, जो कुछ देर पहले एक एक गुलेल के पास एक एक ढेरी कंकड़ों की लगा रहा था। लकड़ियां कम पड़ गई हैं, तेल नहीं उबल सकता। क्या कोयला भी नहीं है? नहीं सरदार। रणबीर कमरे में पीठ पीछे हाथ बांधते कुछ देर तक टहलता रहा। रणनीति यही कहती है कि निर्णय अविलंब किया जाना चाहिए। स्थिति को पहचान लेना, उसकी तह तक आ पहुंचना और तत्परता से निर्णय कर लेना नेता के लिए अनिवार्य है। अपने घर से उठा लाओ, जो भी मिले, लकड़ी या कोयला, और जितना भी मिले उठा लाओ। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मनोहर ठिठका खड़ा रहा। क्या है? अगर माँ नहीं लाने दे तो? इस पर सरदार शस्त्रागार के बीचों बीच खड़ा मनोहर के चेहरे की ओर देखने लगा, फिर कड़क कर बोला, मेरे मुंह की ओर क्या देख रहे हो? जहां से जो हो लकड़ी लाओ। जो आ गया सरदार, मनोहर ने कहा और पीछे हट गया। मगर अभी रुक जाओ, इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है। और तभी तेल उबालने का विचार स्थगित कर दिया गया था। शस्त्रागार एक दो मंजिले घर की ऊपर वाली मंजिल में बनाया गया था, जो खाली पड़ी थी। निचली मंजिल में शंभू के बूढ़े दादा दादी रहते थे। ऊपर वाली मंजिल का छज्जा सड़क पर खुलता था और सड़क के किनारे पीपल का सुंदर पेड़ था, जिससे छज्जा बहुत कुछ ढका रहता था। पर घर के अंदर जाने का रास्ता एक गली में से था, जो पीपल के पेड़ के सामने ही अंदर चली गई थी। यह गली टेढ़ी मेढ़ी थी, अंधेरी और संकरी थी। सड़क पर से जाने वाला व्यक्ति गली में खोस आ जाता था। रणवीर को इसकी स्थिति समझाते हुए शंभू ने इसे चक्रव्यूह के प्रवेश की संज्ञा दी और दल की सरगर्मियों के लिए इसे सबसे ज्यादा उपयुक्त बताया था। गली थोड़ी दूर जाकर बाएं हाथ को मुड़ गई थी। तुम गली में रहने वाले मलेच्छों को जानते हो? रणवीर ने शंभू से पूछा था। हाँ सरदार, मैं इन्हें जानता हूँ। महमूद धोबी हमारे घर के कपड़े धोता है और पीर की कब्र के सामने जो मियाँ जी रहते हैं, वे मेरे दादाजी के साथ बहुत उठते बैठते हैं। तुम इस गली में काम नहीं करोगे, रणवीर ने निर्णायक स्वर में कहा। शंभू हतोत्साह हो गया। रणवीर ने अन्य तीनों योद्धाओं को शस्त्रागार में इकट्ठा किया और रणनीति पर विचार करते हुए बोला, शत्रु पर उबलता तेल डालने का समय अभी नहीं आया है। उबलता तेल उस समय डाला जाता है जब शत्रु अपने दुर्ग पर हमला कर दे और आप हथियारों से उसका मुकाबला न कर सकते हो। फिर उसने तनिक सोच कर कहा, यहाँ केवल छुरा चलेगा, कमानीदार छुरा। फिर उसने इंद्र को संबोधित करके कहा, एक बार फिर पैंतरा करके दिखाओ, उठाओ छुरा दासे पर से। इंद्र फुर्ती से छुरा उठा लाया। कमरे के बीचों बीच दोनों टांगे फैलाए वह क्षण भर के लिए खड़ा रहा। छुरे की मूठ उसके दाएं हाथ में थी और उसका फल पीछे की ओर था। फिर बायां कदम उठाकर वह उछला और हवा में अर्धवृत्त काटकर फिर दोनों टांगे फैलाए रणवीर की पीठ की ओर मुंह किए फर्श पर उतरा। इसी बीच उसने रणवीर की कमर को निशाना बनाते हुए उल्टे हाथ से छुरे के वार का संकेत किया था। रणवीर ने सिर हिलाया। शत्रु की छाती अथवा पीठ को कभी भी निशाना नहीं बनाओ। वार हमेशा कमर में करो या पेट में, और घुमावदार छुरा घोंपने के बाद उसे अंदर ही अंदर थोड़ा मोड़ दो। इससे अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। अगर तुम भीड़ में शत्रु पर वार करते हो तो छुरा बाहर खींचने की कोशिश नहीं करो। उसे वहीं रहने दो और भीड़ में खो जाओ। रणवीर वहीं कुछ बोले जा रहा था जो उसने मास्टर देवव्रत के मुंह से सुना था। थोड़ी देर बाद दल दो हिस्सों में बट गया था। पहले हमला इंद्र के हाथों किया जाएगा, इसलिए इंद्र, शंभु और सरदार शस्त्रागार को छोड़कर नीचे ड्योढ़ी में आ गए, जबकि मनोहर ऊपर बना रहा। फैसला किया गया कि सड़क की ओर छज्जे पर खड़ा सैनिक नजर रखेगा और गली में आने जाने वाले लोगों पर रणवीर और इंद्र और शंभु। और रणवीर के हुक्म से इंद्र ड्योढ़ी में से निकलकर शत्रु पर हमला करेगा। गली में घूमने वाले दरवाजे को थोड़ा सा खोल देने पर सड़क का कुछ हिस्सा और गली का शुरू का हिस्सा नजर आते थे। पीपल के तने के पार सड़क का हिस्सा था जो दोपहर की धूप में चमक रहा था। गली के सामने एक तांगा रुका। रणवीर ने दरवाजे को लगभग पूरा मुद दिया और एक पतली सी दरार में से बाहर की ओर देखने लगा। कौन है? इंद्र ने फुसफुसाकर पूछा। रणवीर चुप रहा। अन्य दो सैनिकों ने भी आगे बढ़कर दरार पर आंख लगाई। जलाल खान है, नवाबजादा जलाल खान, शंभू बोला। यह सड़क के किनारे सामने वाले मकान में रहता है। हमारे मोहल्ले का बहुत बड़ा रईस है, डिप्टी कमिश्नर से मिलने जाता है, शंभू एक सांस में कह गया। पीछे गली में कोई दरवाजा खुला और फिर खड़ाक से बंद हो गया। तीनों के कान खड़े हो गए। रणवीर ने दरवाजे के पर्दे को इस तरह से खोला कि पर्दों के बीच की दरार गली की ओर खुल गई। कौन है? इंद्र ने फुसफुसा कर पूछा। म्लेच्छ है, रणवीर बोला। दोनों मित्र ऊपर नीचे दरार से आंख लगाकर खड़े हो गए। एक दाढ़ी वाला बड़ी उम्र का आदमी गली में से चलता हुआ सड़क की ओर आ रहा था। मियाँ जी हैं, शंभू पहचानते हुए बोला। पीर की कब्र के सामने वाले घर में रहते हैं। इस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। रोज इस वक्त नमाज पढ़ने जाते हैं। चुप रहो। मियाँ गली का थोड़ा सा हिस्सा लाँघ कर पीपल के पेड़ के पास आया और वहाँ से बाएं हाथ घूम गया। वह काले रंग की वास्कट पहने था और नीचे सलवार और ढीली सी चप्पल। उसके दाएं हाथ में छोटी सी तस्बीह लटक रही थी। बूढ़ा होने के कारण उसकी पीठ झुकी थी और वह धीरे धीरे चलता जा रहा था। जाऊं? इंद्र ने झट से सरदार से पूछा। नहीं, अब वह सड़क पर पहुंच चुका है। तो क्या हुआ? नहीं, सड़क पर हमला करने की मनाही है। शंभू को इंद्र की आवाज़ में उतावलापन लगा, जबकि स्वयं शंभू का मन शिथिल सा पड़ रहा था। इंद्र के पूछने पर शंभू को एक अजीब धक्का सा लगा था। सरदार की मनाही पर उसे मन ही मन राहत सी मिली। कुछ देर तक वे फिर दरवाजे के पीछे खड़े रहे। वक्त बीतता जा रहा था। 4 बजे नल खुल जाएगा और गली की औरतें घड़े उठाए नल पर पहुंच जाएंगी। दोपहर बीतते ही इक्का दुक्का और लोग भी बाहर निकलने लगेंगे। इस बीच एक एक करके दो आदमी गली में दाखिल हुए। एक के हाथ में साइकिल थी और आंखों पर चश्मा था। यह बाबू चूनीलाल है, यह एक दफ्तर में काम करता है, इसके पास कुत्ता है। और दूसरा एक सिख सरदार गली में आया जो कंधे पर गठरी उठाए हुए था। दोनों बारी बारी से आए और अपने पटपटाते जूतों के साथ गली लांघ गए। तभी उन्हें फिर किसी के कदमों की आहट मिली। इंद्र ने दरार में से झांक कर देखा और रणवीर की कोहनी को छू दिया। कौन है? इंद्र कुछ नहीं बोला और बाहर देखता रहा। पटपटाते हुए जूतों की आवाज़ आई। रणवीर झट से दरार में से झांकने लगा। शंभू भी दरार के साथ चिपक गया था। कौन है? कोई खोमचे वाला है, इंद्र ने फुसफुसा कर कहा। नहीं, इत्र फुलेल बेचता है, दूर कहीं रहता है, इस वक्त रोज इधर से गुजरता है, म्लेच्छ है। एक भारी भरकम आदमी मेहंदी से रंगी मूछों और कूची दाढ़ी वाला अपने अगल बगल बहुत से थैले लटकाए पीपल के पेड़ के नीचे से होकर गली के अंदर आ रहा था। बोझ के कारण उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। उसके दाएं कान में रुई के फाहे थे और ऊपर 2-3 सलाइयां पगड़ी में खोंस रखी थीं। रणवीर को लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई हरकत हुई हो। उसने घूम कर देखा। इंद्र का हाथ अपनी जेब में रखे घुमावदार छुरे पर चला गया था। क्षण बीत रहे थे और निर्णय का वक्त आ गया था। यह आदमी म्लेच्छ था, अजनबी था, थैलों से लदा था, न भाग सकता था, न अपने को बचा सकता था और थका हुआ था। सभी गुण मौजूद थे। कुछ सवालों का जवाब मस्तिष्क नहीं देता, अंतः प्रेरणा देती है। क्षण बीत रहे थे और फेरी वाला गली में आगे बढ़ता जा रहा था। रणवीर ने आँख का इशारा किया और इंद्र लपक कर बाहर हो गया। उसके बाहर निकलने पर क्षण भर के लिए बाहर की रोशनी का चुंधियाता पुंज जैसे अंदर घुस आया, पर रणवीर ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। गली का मोड़ मुड़ने पर सहसा इत्र फरोश की नजर बालक पर पड़ गई। अपने पटपटाते जूतों के कारण शायद वह उसके पांव की आहट नहीं सुन पाया था। इत्र फरोश मुस्कुरा दिया। किधर जा रहे हो बेटे इस वक्त, उसने कहा और मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर इंद्र के सिर पर रख दिया। इंद्र ठिठक गया और एकटक उसके चेहरे की ओर देखने लगा। उसका हाथ अपनी जेब में था। इंद्र के अवचेतन में यह बात उठी कि इस आदमी के गाल फूले हुए हैं और मास्टर जी ने एक बार कहा था कि फूले हुए गालों वाले लोग बुजदिल होते हैं और उनका मैदा खराब होता है और वे भाग नहीं सकते, जल्दी हाँफने लगते हैं, और यह आदमी सचमुच हाँफ रहा था। इंद्र अपने शिकार पर झपटने के लिए पैर तोड़ रहा था। उसकी आंखें अभी भी मृगश के चेहरे पर गड़ी थीं। इत्र फरोश को लड़का मासूम सा लगा, छोटी उम्र का, कोमल सा, जो शायद आश्रय खोजता हुआ उसके पीछे पीछे चला आया था, शायद डरा हुआ था। शहर में आज सभी लोग डरे हुए थे। कहाँ रहते हो? चलो मेरे साथ आते जाओ, आज के दिन बाहर अकेले नहीं घूमना चाहिए। लेकिन इंद्र टस से मस नहीं हो रहा था। अभी भी वह इत्र फरोश के चेहरे की ओर घूरे जा रहा था। तेली मोहल्ले तक मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, आगे कहीं जाना हुआ तो तुम्हें किसी के सुपुर्द कर दूंगा। आज शहर में गड़बड़ है। और बिना बालक के उत्तर की प्रतीक्षा किए वह घूम कर आगे बढ़ने लगा। क्षण भर के लिए इंद्र वहीं ठिठक खड़ा रहा, फिर साथ हो लिया। आसपास के घरों में चुप्पी छाई थी। उनकी ड्योढ़ियों में इतना अधिक अंधेरा था कि आंखें फाड़ फाड़ कर भी देखो तो भी कुछ नजर नहीं आता था। मुझे भी आज फेरी पर नहीं निकलना चाहिए था, उसने इंद्र से कहा। आज भी कोई दिन है फेरी करने का? सारे शहर में सूखा पड़ा है, पर मैंने सोचा घर पर बैठकर क्या करूंगा। दो चार आने की जुगाड़ हो जाए तो क्या बुरा है, दुकानदार घर पर बैठा रहे तो खाएगा कहाँ से। और इत्र फरोश हंस दिया। पानी का नल नज़दीक आ रहा था। नल में पानी नहीं था और उसके नीचे पत्थर की सिल जो घिस घिस कर गहरी हो गई थी सूखी पड़ी थी, और उसके आसपास दो तीन बर्रे उड़ रहे थे। कुछ ही दिन पहले तक इंद्र बर्रे करता था। इत्र के चार फाहे भी कोई हमसे ले ले तो हमारी चवन्नी खड़ी हो जाती है, इत्र वाले ने जैसे अपने आप से बात करते हुए कहा। वक्त काटने के लिए वह बतियाना चाहता था। शायद शहर की सूनी गलियां लांघने के बाद वह खुद डरा हुआ था। हमें एक एक गली का मालूम है कि वहां कौन इत्र खरीदता है। जिस मर्द की दो बीवियां हों वह जरूर इत्र लेता है। वह वस्मा भी लेगा और सुरमा भी लेगा। वह मर्द भी इत्र खरीदता है जो उम्र में बड़ा हो और जिसकी जवान बीवी हो। अच्छा और बताओ, वह बच्चे का मन बहलाने के लिए बोले जा रहा था। इत्र फरोश की बातों के ही कारण इंद्र संभल गया था और पैर मजबूती से चल रहे थे, और कमानेदार चाकू की मोट को भी उसने मजबूती से पकड़ रखा था। उसके मन में एकाग्रता आने लगी थी। उसकी आंखें इत्र फरोश की कमर पर टिकने लगी थीं। वही एकाग्र दृष्टि जिससे अर्जुन ने पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख को फोड़ा था। इत्र फरोश के बाएं कंधे से झूलता थैला बार बार घड़ी के पेंडुलम की तरह उसकी कमर के आगे हिल रहा था। उसका गाढ़े का कुर्ता बोतलों के थैले के नीचे कुछ कुछ उभरा हुआ था। नल पार करते ही इंद्र की सारी चेतना जैसे उसके दाएं हाथ में आ गई। नल के आगे का फासला एक एक बालिश्त जैसे उसके मस्तिष्क में गिना जाने लगा था। बोतलों का थैला झूल रहा था। कमर बार बार सामने आ रही थी और इत्र फरोश के पटपटाते जूते उसके साथ साथ बज रहे थे। बाजार में फाहे ज्यादा बिकते हैं, घरों में इत्र और तेल ज्यादा बिकता है, इत्र फरोश कह रहा था। सहसा इंद्र लपका और उसने पैंतरा मारा। इत्र फरोश को लगा जैसे उसके बाएं हाथ कोई चीज जोर से हिली है। उसे भास हुआ जैसे कोई चीज चमकी भी है, पर वह खड़ा होकर घूम कर देखे कि क्या बात है। तब तक उसे थैले के नीचे तीखी चुभन का सा भास हुआ। इंद्र का निशाना ठीक बैठा था। वार करने के बाद सरदार के आदेशानुसार उसने चाकू को थोड़ा मोड़ दिया था और अंतड़ियों के जाल में फंसा भी दिया था। इत्र फरोश अभी पूरी तरह से मुड़ नहीं पाया था कि उसने देखा लड़का पीछे की ओर भागा जा रहा है। उसे फिर भी समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ है। उसकी इच्छा हुई कि लड़के को आवाज़ देकर बुला ले, लेकिन तभी उसे अपने पैरों पर बहता खून नजर आया और कमर में कुछ कराहता, कुछ डूबता सा महसूस हुआ। मीठा सा दर्द उठा, फिर तेज नश्तर सा दर्द, और वह डर के मारे बदहवास हो गया। ओ लोको, मार डाला, मुझे मार डाला, ओ लोको! इत्र फरोश इतना घबरा गया था कि उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहा था। वह कमर में लगे जख्म से इतना नहीं मर रहा था जितना त्रास और भय से और भोले बालक द्वारा किए गए हमले से। उसके लिए अपने थैलों का बोझ उठा पाना असंभव हो रहा था, और उनके बोझ के नीचे ही वह मुंह के बल धड़ाम से गिरा। इंद्र के भागते पांव उसे 2 क्षण पहले साफ नजर आ रहे थे, पर अब गली में उस लड़के का नाम निशान नहीं था। ओ लोको, वह फुसफुसाया। एक शिथिल सी चीख उसके होठों से निकली और उसकी आंखें गली के ऊपर फैले गहरे नीले आसमान के छोटे से टुकड़े पर लग गईं। वहां 2-3 चीलें उड़ रही थीं। चीलें अब 2 की जगह 4 हो गई थीं, और आकाश की नीलिमा धीरे धीरे हिलने और धूमिल पड़ने लगी थी। अध्याय 13। नत्थू परेशान था। अपनी कोठरी के बाहर बैठा वह चीलम पर चीलम फूके जा रहा था। जितना अधिक वह मार काट की अफवाहों को सुनता, उतना ही अधिक उसका दिल बैठ जाता। बार बार अपने मन को समझाता, मैं अंतर्जामी तो नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम किस काम के लिए मुझसे सुअर मरवाया जा रहा है। कुछ देर के लिए उसका मन ठिकाने भी आ जाता, लेकिन फिर जब किसी घटना की बात सुनता तो फिर बेचैन होने लगता। रात के व्यापार को याद करके ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते। सुनसान इलाका, बदबू और सीलन भरी कोठरी, चुराया हुआ सुअर और अंधेरे के पर्दे में आता हुआ कालू का छकड़ा, सारी की सारी घटना ही दुःस्वप्न की तरह उसकी आंखों के आगे घूम जाती। उसने फिर चीलम उठा ली। भाड़ में जाए मुरादरी और उसका सुअर, जो हो गया सो हो गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, मैंने तो जो कुछ किया अनजाने में किया। ये लोग जो आग लगा रहे हैं और राह जाते लोगों को मार रहे हैं, ये तो आंखें खोलकर सब काम कर रहे हैं। ये क्यों बुरा कर्म कर रहे हैं? मेरे एक सुअर को मार देने से क्या होता है? एक सुअर को मार देने में रखा ही क्या है? मैं मुजरिम हूँ तो क्या ये लोग मुजरिम नहीं? वे लोग जिन्होंने मंडी में आग लगाई है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हो गया जो होना था, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। नत्थू की औरत धोती के पल्लू से हाथ पोंछती हुई बाहर निकली। उसे देखकर उसके मन में फिर अकुलाहट हुई। नत्थू का मन हुआ उसे सारी बात कह डाले, कोई तो हो जिसे वह अपने दिल की बात कह सके। नत्थू की आंखें फिर मैदान की पार खड़े आदमी की ओर घूम गईं। तू क्या देख रहा है? उसकी पत्नी ने पूछा। फिर मैदान के पास उस आदमी की ओर देख कर बोली, कौन है वह? क्या तू उसे जानता है? नहीं तो मैं क्या जानू कौन है, मैं नहीं जानता, नत्थू ने कहा और फटी फटी आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा अपना काम देख, नत्थू ने रुखाई से कहा। उसकी पत्नी उन्हीं कदमों कोठरी के अंदर लौट गई। नत्थू ने कनखियों से फिर सड़क की ओर देखा। वह आदमी जा रहा था। मैदान की छोर पर उसने सिगरेट सुलगा ली थी और अब सिगरेट के कश छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेरा भरम था, नत्थू ने मन ही मन कहा। काम के दिन इधर बीसियों आदमी आते हैं जिन्हें हम लोगों से काम रहता है। उसका मन आश्वस्त हो गया, नाहक ही औरत से खींच कर बोला, सुन तो। उसने पत्नी को पुकार कर कहा, थोड़ी चाय बना दे। वह दहलीज पर आकर खड़ी हो गई थी, एक हाथ उठाकर चौखट पर रखे थी और धीरे धीरे मुस्कुराए जा रही थी। पहले तो कभी तुम इस वक्त चाय नहीं मांगते थे, आज छुट्टी मना रहे हो इसलिए। इस पर वह तूनक उठा, छुट्टी मना रहा हूँ या तुझे छुट्टी नजर आ रही है? तू नहीं बना सकती तो मैं खुद बना लूंगा, लंबी बात क्यों करती है? और नत्थू उठकर कोठरी के अंदर चला गया। अभी बना देती हूँ, चाय बनाने में कौन सी देर लगती है, तू बिगड़ता क्यों है? नहीं, तू हट जा, मैं अपने आप बना लूंगा, नत्थू ने गुस्से से कहा। मेरे रहते तू चूल्हा जलाएगा, मैं मर न जाऊं, वह बोली और आगे बढ़कर उसकी बांह पकड़कर उसे उठाने लगी। उठ जा, तुझे मेरे सिर की कसम। नत्थू उठ खड़ा हुआ। गहरी टीस सी उसके मन में उठी। क्षण भर के लिए वह ठिठका सा खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर वह अपनी पत्नी से लिपट गया। आज तुझे क्या हो गया है? उसकी स्त्री ने कहा और हंसती। पर पति की आलिंगनों में उसे उसके दिल की छप 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 छपाहट का भास मिलने लगा। कोई बात है जो इसके दिल में कांटे की तरह चुभी है, जिससे यह कल रात से अजीब सा व्यवहार कर रहा है। नत्थु बेचैन सा खड़ा हो गया और देर तक ठिठका खड़ा रहा। क्या है? उसकी पत्नी घबरा कर बोली, तुम इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? सच सच बताओ, तुम्हें मेरे सिर की कसम। पर नत्थु चुपचाप सट कर खाट पर जा बैठा। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम मुझसे छिपा रहा है। कुछ नहीं, उसने फिर से कहा। पत्नी नत्थु के पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू बोलता क्यों नहीं? कुछ कहने को हो तो बोलूं, उसने धीरे से कहा। चाय बना दूं? ठहर, मैं चाय बना देती हूँ। मुझे चाय नहीं चाहिए। अभी तो खुद बनाने को कह रहा था, अभी चाय नहीं चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, फिर चल, खाट पर चल, उसकी पत्नी ने हंस कर कहा। नहीं, खाट पर भी नहीं चलूंगा। नाराज हो गया? तू मेरे साथ बात बात पर नाराज होने लगा है, पत्नी ने उलाहने के स्वर में कहा। नत्थु चुप रहा। वह सचमुच बिसुरते बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। तू कल रात कहाँ गया था? तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया, नत्थु की पत्नी ने कहा और उसके साथ फर्श पर बैठ गई। नत्थु ने ठिठक कर पत्नी की ओर देखा। इसे जरूर पता चल गया है, सभी को देर सवेर पता चल जाएगा। नत्थु को लगा जैसे उसकी टांगें कांपने लगी हैं। बताएगा नहीं तो मैं यहीं सिर पीट लूंगी। तू कभी भी मुझसे दिल की बात नहीं छिपाता था, आज क्यों छिपाने लगा है? नत्थु की आंखें देर तक पत्नी के चेहरे पर टिकी रहीं। अगर इसे शक हो गया है तो न जाने क्या सोच रही होगी, मेरे बारे में क्या सोचने लगी होगी। पर पत्नी की विश्वास भरी और याचना भरी आंखें अभी उसकी ओर देखे जा रही थीं। फिर सहसा वह अपने आप ही बोलने लगा, मुझे तुझे मालूम है मंडी में आग क्यों लगी है? मालूम है, मस्जिद के सामने किसी ने सूअर मारकर फेंका था। इस पर मुसलमानों ने मंडी को आग लगा दी। वह सूअर मैंने मारा था। नथु की पत्नी को काटो तो खून नहीं। तूने तूने यह बुरा काम क्यों किया? और उसके चेहरे पर से सारा खून उतर गया और वह नत्थु की ओर फटी आंखों से देखती गई। नत्थु ने धीरे धीरे सारा किस्सा कह सुनाया। सुअर को फेंकने भी तू गया था? पत्नी ने पूछा। नहीं, कालू उसे चकड़े पर लाद कर ले गया था। कालू तो मुसलमान है, वह कैसे ले गया? कालू मुसलमान नहीं है, वह ईसाई है, गिरजे में जाता है। उसकी पत्नी देर तक उसके चेहरे की ओर देखती रही। तूने बहुत बुरा काम किया है, पर इसमें तेरा क्या दोष? तुझसे लोगों ने धोखे से काम करवाया है, तूने धोखे में आकर यह काम किया है। वह मानो अपने से बात करती हुई बुदबुदाई, पर नत्थु की बात सुनकर वह सिर से पांव तक कांप गई थी। उसकी पत्नी को लगा जैसे किसी भयानक ग्रह की छाया उनके घर पर पड़ गई है, जो उपवास करने से भी नहीं टलेगी, प्रायश्चित करने से भी नहीं टलेगी। पर फिर भी उसके मन पर बराबर बोझ बना रहा। नत्थु के दिल में से गहरी हूक सी उठी। पत्नी ने आंख उठाकर नत्थु की ओर देखा। उसे विचलित देखकर उसकी पत्नी के दिल में फिर ममता का सोता फूट पड़ा। वह उठकर नत्थु के पास जा बैठी और उसका हाथ पकड़कर बोली, तभी तो मैं कहूँ, यह इतना परेशान क्यों है? मुझे क्या मालूम, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अपना दुख मन के अंदर नहीं रखते। कितने पैसे मिले थे सुअर मारने के? 5 रुपये, वह मुझे पेशगी ही दे गया था। 5 रुपये? इतने ज्यादा? तूने क्या किया उन रुपयों का? कुछ नहीं किया, 4 रुपये बच रहे हैं, उधर ताकी पर रखे हैं। मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा तेरे लिए धोतियों का जोड़ा लाऊंगा। मैं इन पैसों से धोतियाँ लूंगी? मैं इन पैसों को आग आग नहीं लगाऊंगी, नत्थु की पत्नी ने आवेश में कहा। तुमसे ऐसा कुकर्म करवाया? पर फिर वह संभल गई, मुस्कुराने की निष्फल चेष्टा करते हुए बोली, यह तो तेरी कमाई के पैसे हैं, मैं क्यों नहीं लूंगी? इनसे जो कहेगा लूंगी। वह उठ खड़ी हुई और ताक के पास गई, एड़िया उठाकर ताक के ऊपर रखी, रकम को देखा, फिर पति की ओर लौट आई। नत्थु की गर्दन और भी ज्यादा झुक गई थी और वह फिर किसी गहरी अंधेरी खोह में जा पहुंचा था। तूने वह आदमी देखा था जो मैदान के पार खड़ा था? नत्थु ने सिर ऊपर उठाकर पूछा। हाँ तो, मगर इससे क्या है? मैं सोचता हूँ वह बागड़ी था जिसका सुअर मैंने अंदर खींच लिया था, उसे जरूर पता चल गया होगा। तुम्हें क्या हो गया? पता चल गया है तो आकर तुमसे ले ले। तुम कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे हो जी, नत्थु की पत्नी ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ मुझे क्या, तू ठीक ही तो कहती है, मुझे क्या, भाड़ में जाए मुराद अली और उसका सुअर, मैं कल भी यही कहता था, नत्थू ने कहा और आश्वस्त सा महसूस करने लगा। अब पूरे 15 रुपए मेरे पास हो गए, अब तू भी अपने लिए कुछ ले लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नत्थू भावोद्वेलित होकर बोला। जब तू मेरे पास होती है तो मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है। नत्थू की पत्नी झट से कोठरी के कोने में रखे चूल्हे के पास जा बैठी और चाय बनाने लगी। जिसका दिल साफ होता है उसे भगवान कुछ नहीं कहते, नत्थू की पत्नी बोली। हमारा दिल साफ है, हमें किसी का डर क्यों होने लगा? फिर वहीं बैठी बैठी बोली, मुझे तो बताया, अब डेरे में और किसी से नहीं कहना। नहीं मैं क्यों कहूँगा, तू भी किसी से नहीं कहना। नत्थू की पत्नी गिलासों में चाय डाल रही थी जब मैदान पार भागते कदमों की आवाज़ आई। नत्थू की पत्नी का हाथ ठिठक गया, उसने आंख उठाकर नत्थू की ओर देखा पर बोली कुछ नहीं, उल्टे मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद बाड़े में किसी चमार की आवाज़ आई। एक चमार दूसरे से पूछ रहा था, क्या हुआ है चाचा, दंगा हो गया है रास्ते में। कहाँ, रास्ते में, हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया है, कहते हैं दो आदमी मारे गए हैं। यह आदमी कौन था जो भागा जा रहा था? नहीं मालूम कौन था, कोई बाहर का आदमी रहा होगा। कोठरी के अंदर और बाहर फिर से चुप्पी छा गई। चमार अपनी कोठरी के अंदर चला गया था या पिछवाड़े चला गया था। नत्थू के हाथ में चाय का गिलास देते हुए उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी जाओ डेरे वाले से मिल लो, चलो मैं भी चलती हूँ, यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे। नत्थू की पत्नी उठी और अनायास ही झाड़ू लेकर कोठरी बुहारने लगी। एक एक कोना, एक एक चीज उठाकर नीचे से झाड़ू लगाने लगी। उसे स्वयं मालूम नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, जैसे झाड़ू से वह किसी छाया को कोठरी में से बुहार कर बाहर कर देना चाहती हो। देर तक वह कोठरी को बुहारती रही, फिर उसने कोठरी के फर्श को धोया, खूब पानी डाल डालकर फर्श धोती रही, पर अंत में जब थक कर खाट पर बैठी तो उसे लगा जैसे बंद दरवाजे की दरारों में से बड़ी छाया फिर कोठरी में लौट आई है। कोठरी अंधेरी पड़ गई है और छाया कोठरी के अंदर चारों ओर मुस्कुराने लगी है। अध्याय 14। पहली बस खानपुर से चलकर सुबह 8 बजे गांव पहुंचती थी, वह नहीं आई। उसके बाद हर घंटे 2 घंटे के बाद शहर की ओर से भी और खानपुर की ओर से भी बसें आती थीं। आज दोपहर हो गई, एक भी बस नहीं आई। चाय की दुकान में केतली पर चढ़ाया गया पानी सुबह से खौलता रहा। दुकान के सामने दोनों बेंच खाली पड़े थे। पहले बेंचों पर भीड़ लगी रहती थी, गांव का कोई आदमी नहीं था जो आता जाता हरनाम सिंह की दुकान पर न बैठता हो। बस स्टॉप पर 2-3 झबराइले कुत्ते घूम रहे थे, चारों ओर जैसे सकता छा गया था। स्त्री की सूझ पैनी होती है, बंतों ने कल शाम से ही कहना शुरू कर दिया था कि इस गांव से निकल चलो, खानपुर चले चलो, जहां हमारे और सगे संबंधी रहते हैं। इस सारे गांव में अकेले ये दो जीव सिख परिवार के थे, बाकी सारा गांव मुसलमानों का था, पर हरनाम सिंह नहीं माना। चलती दुकान छोड़कर कैसे भाग जाए, झगड़े फसाद तो होते रहते हैं पर काम धंधा तो बंद नहीं किया जा सकता। फिर जाएं तो कहाँ जाएं, शहर में जाएं जहाँ पहले से ही आग लग रही है, खानपुर में जाएं तो वहाँ हमारा कौन खिलाने के लिए बैठा है, पीछे किसी ने दुकान लूट ली तो फिर खाएंगे कहाँ से। बेटे के पास जाएं, बेटा 20 मील दूर मीरपुर गांव में बैठा है, जैसे हम यहाँ अकेले हैं वैसे ही वहाँ पर वह अकेला है। जहाँ बैठे हो गुरु महाराज के आसरे वहीं बैठे रहो। उसके पास पहुंच भी गए तो वह हम बूढ़ों की जान बचाएगा या अपनी जान बचाएगा, अपनी जेब से भी खाएंगे तो कितने दिन और कोई दूसरा खिलाएगा तो कितने दिन। और चौकी पर बैठा हरनाम सिंह गोद में रखे हाथ जोड़ देता है और कहता है, जिसके सिर ऊपरी तू सुवामी सो दुखू कैसा पावे, हे मालिक जिसके सिर पर तेरा हाथ है वह दुख क्यों कर पाएगा। बंतु सुनती और चुप हो जाती, फिर जब अंदर ही अंदर उसका दिल डूबने लगता तो कहती, चलो मेरी बहन के गांव चले चलो, वह तो नज़दीक है, वहाँ गुरुद्वारे में पड़े रहेंगे, बहन के पास नहीं रहेंगे, वहाँ सिख संगत बड़ी है, अपने लोगों का आसरा होता है। पर हरनाम सिंह वह भी नहीं माना, उसे अंदर ही अंदर विश्वास था कि और लोगों के साथ भले ही बुरा भला हो जाए, इसके साथ नहीं हो सकता। बंतु फिर चुप हो गई। तर्क का जवाब तो तर्क में दिया जा सकता है, पर विश्वास का जवाब तर्क के पास नहीं है। जहां बंतों का दिल किसी किसी वक्त डूबने लगता था, वहां हरनाम सिंह एक बार भी विचलित नहीं हुआ। उसका चेहरा बराबर खिला रहा। सारा वक्त वह गुरु महाराज का नाम लेता रहा और उसे देखकर बंतों को भी त्राण मिलता था। पर आज कोई बस नहीं आई थी, एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं चढ़ा था और सड़क सूनी पड़ गई थी। बल्कि दो तीन बार इक्के दुक्के आदमी, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, गांव की ओर जाते हुए उनके घर की ओर घूर घूर कर देखते देख रहे थे। और जब दोपहर ढलने को आई तो ढक्की पर से उसे किसी के कदमों की परिचित सी आहट आई। करीम खान लाठी टेकता चला आ रहा था। हरनाम सिंह का ढांढस बंधा। करीम खान कुछ बताएगा, कोई सुझाव देगा, कोई तरकीब देगा। यहाँ खतरा हुआ तो हम करीम खान के डेरे पर चले जाएंगे। करीम खान दुकान के सामने आया पर रुका नहीं, न ही हरनाम सिंह की ओर मुंह किया। केवल चाल धीमी कर दी और खखारने के बहाने बुदबुदाया, हालत अच्छी नहीं हरनाम सिंह, तू चला जा। दो एक कदम जाकर फिर बोला, गांव वाले तेरे वल अखवी नहीं चुक्कड़ अगे, पर बाहरों लोका दे आड़दा डर है, उन्हाट नू रोकड़ा साढ़े बसदा नहीं। और फिर खांसता हुआ लाठी पटपटाता आगे बढ़ गया। तभी पहली बार हरनाम सिंह की विश्वास की टेक बुरी तरह से हिल गई। करीम खान रुका नहीं तो इसका मतलब है सचमुच खतरा है, और जो करीम खान आया है तो जोखम ही उठाकर आया होगा। फिर भी हरनाम सिंह इतना घबराया नहीं जितना उदास हो गया। वैराग्य का भाव उसके दिल में ज्यादा उठा, क्षोभ क्रोध भय आदि का कम। 5-1 मिनट के बाद करीम खान फिर लौट कर आया। फिर वैसे ही ढक्की चढ़ते, कमर पर हाथ रखे, हाँफते खकारते उसने कदम धीमे किए और बुदबुदाया, देर नहीं कर हरनाम सिंह, हालत चंगी नहीं, बाहरों बलवाइयाँ दें आड़ा डर है। और उसी तरह कमर पर हाथ रखे हाँफता हुआ ढक्की चढ़ने लगा। हरनाम सिंह कहाँ जाए, मीलों दूर तक रास्ते और मैदान और घाटियां फैली थीं। करीम खान ने तो कह दिया कि चले जाओ, मगर कहाँ जाए, उन्हें कहाँ आश्रय मिल सकता था। 60 की उम्र और साथ में औरत जात, वह कितनी दूर तक भाग कर जा सकता है, फिर भाग कर जाएगा भी तो कहाँ जाएगा। मन के अंदर से फिर एक बार आवाज आई, कहीं नहीं जाओ, यहीं बने रहो, जब बलवाई आए तो दुकान भी हाजिर कर देना और जान भी हाजिर कर देना। यहाँ मर जाना अच्छा है परदेशों की खाक छानने से, कौन आएगा हमला करने। बार बार वह सोचता पर यकीन नहीं होता था कि गांव का कोई आदमी उस पर हमला करने आएगा, या गांव वाले बाहर वाले को हमला करने देंगे। हरनाम सिंह उठकर पीछे कोठरे में आ गया जहां बंतू बैठी थी। करीम खान आकर कह गया है कि यहाँ से निकल जाओ, बाहर से बलवाई आ रहे हैं। क्षण भर में बंतों के सारे शरीर में खून की जगह पानी भर गया, बैठी की बैठी रह गई। रात सिर पर आने वाली थी और कहीं पर ठौर ठिकाना नहीं था। और इधर अंधेरी कोठरी में खड़ा उसका पति अवसाद की मूर्ति लग रहा था। पर अब न सोचने का वक्त था, न ज्यादा देर ठहरने का वक्त था। जितनी जल्दी हो सके अंधेरा पड़ते ही यहाँ से निकल चलो, दो रोटियां सेक लूं, जाने कहाँ कहाँ भटकना होगा। रोटियां सेकने का कहाँ वक्त रह गया है, भली लोग पहले जाने का सोचा होता तो यह भी कर लेते। तभी कहीं दूर से ढोल बजने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे की ओर देखते रह गए। बलवाई आ गए हैं, खानपुर की तरफ से आए जान पड़ते हैं। उधर ढोल बजने की आवाज आई, इधर गांव के पार से नारे लगने शुरू हो गए, या अली, अल्लाह अकबर। ये अशरफ और लतीफ होंगे, वही गांव के लीगी हैं, वही पाकिस्तान के नारे लगाते रहते हैं, हरनाम सिंह ने मन ही मन कहा। वातावरण जैसे थर्रा उठा। शाम पड़ चुकी थी लेकिन झुटपुटा अंधेरा में नहीं बदला था। बलवाइयों की आवाज बाएं हाथ कस्सी के पार से आई जान पड़ती थी। तभी हरनाम सिंह की नजर कोठरी की छत से लटकते मैना के पिंजरे पर पड़ी। बंतो, पिंजरा कोठरी के पीछे ले जा और उसे खोलकर मैना को उड़ा दे। कुछ ही देर पहले बंतो ने मैना के पिंजरे में रखी कटोरियों में पानी और दाना डाल दिया था। अब जब वह पिंजरे को उतार कर बाहर ले चली तो मैना ने रोज की रटी हुई गर्दान बोल दी, बंतो रब राखा, सरबत दो रब राखा। सुनते ही बंतु का गला भर आया और जवाब में बंती भी बुदबुदा दी, हाँ मैना रब राखा, सर्वदा रब राखा। ये शब्द मैना ने हरनाम सिंह से सीख लिए थे। अक्सर हरनाम सिंह दुकान के पटरे पर बैठा होता और उसकी पत्नी पीछे कोठरी में बैठी होती, और जब दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता तो हरनाम सिंह अंदर बैठा बंतों के साथ गुरुवाणी और धर्म की बातें किया करता था। कभी उठते बैठते वह कहा करता था, रब राखा सरबद दा रब राखा, और मैना इन शब्दों को घर में दोहराने लगी थी। मैना के मुंह से ये शब्द सुनकर बंतों को बड़ी ताकत मिली थी, उसमें साहस और स्थिरता आ गई, मानो नन्हा सा पक्षी उसे सीख दे रहा था। पिछवाड़े जमीन के छोटे से टुकड़े में हरनाम सिंह ने सब्जी रोप दी थी, एक आम का पेड़ उगा रखा था। आंगन के बीचों बीच पहुँच कर बंतों ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और धीमे से बोली, जा मैना तेरा रब राखा, सरबद रब राखा। पर मैना ज्यों की त्यों पिंजरे में बैठी रही। उड़ जा मैना, उड़ जा माँ सदके, और बंतु का कहते कहते गला भर आया और पिंजरे को वहीं जमीन पर छोड़कर लौट आई। तभी फिर ढोल बजने की आवाज़ आई। अब भी आवाज़ ज़्यादा नज़दीक थी। गांव में भी आवाज़ों की भिनभिनाहट बढ़ने लगी थी। लगता बहुत से लोग इकट्ठे होकर कहीं से बड़े आ रहे हैं। गांव के अंदर से नारे की आवाज़ बराबर किसी किसी वक्त आ रही थी। बंतो और हरनाम सिंह अपने तीन कपड़ों में और थोड़ी बहुत पूंजी और बंदूक संभाले दुकान को ताला लगाकर बाहर निकल आए। घर के बाहर कदम रखते ही सारा प्रदेश पराया हो गया। कहाँ जाएं, किधर को घूमें, बाएं हाथ को गांव फैला था, उसी ओर कस्ती थी और कस्ती के पार से बलवाइयों के ढोल सुनाई दे रहे थे। दाईं ओर पक्की सड़क खानपुर की ओर चली गई थी। उस ओर जाना खतरे से कम खाली नहीं था और इस ओर किनारा ऊंचा था। अगर कहीं जाया जा सकता था तो उसी रास्ते छिप लुक कर जाया जा सकता था। सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं था। नाले में पानी नौ के बराबर था। चौड़ा पार सूखा और रेतीला था और कंकड़ों पत्थरों से अटा था। दोनों ने सड़क पार की और थोड़ी दूरी तक आकर नाले की ओर उतरने लगे। तब तक बलवाई गांव के निकट पहुंच चुके थे और इसी ओर बढ़े आ रहे थे। वातावरण उनके नारों और ढोल मजीरों की आवाज़ से गूंज रहा था। हरनाम सिंह और उसकी पत्नी नाले की ओर उतर रहे थे जब ऊपर कहीं से चीड़ सी आवाज़ आई, बंतो तेरा रब राखा, सरबद दा रब राखा। मैना उन्हीं के पीछे उड़कर चली आई थी और पेड़ पर बैठ गई थी। तभी बलवाई उस टीले के ऊपर पहुंच गए जिसकी ढलान उतरने पर नीचे दाएं हाथ हरनाम सिंह की दुकान थी। बलवाई चिघाड़ रहे थे, ऊंचे ऊंचे नारे लगाते, ढोल बजाते नीचे उतर रहे थे। चांद निकल आया था और चारों ओर छिटकी चांदनी में हर पेड़ और हर चट्टान के पीछे छिपे किसी अज्ञात शत्रु का भास होने लगा था। नदी सूखी पड़ी थी और चांदनी में नदी का पाट सफेद चादर सा बिछा था। पति पत्नी ऊंचे किनारे पर से उतर आए थे और अब उसी की ओट में धीरे धीरे दाएं हाथ आगे की ओर बढ़ने लगे थे। नदी का किनारा जहाँ वे चले जा रहे थे छोटे बड़े पत्थरों से अटा पड़ा था और दोनों हाँफने लगे थे। दोनों के कान बलवाइयों की ओर लगे थे। शोर पहले तो नजदीक आता गया, फिर थम गया। हरनाम सिंह को लगा कि बलवाई उसकी दुकान के सामने रुक गए हैं और निश्चय नहीं कर पा रहे कि अब क्या करें। हरनाम सिंह ने मन ही मन करीम खान को धन्यवाद कहा। वह वक्त पर न कह देता तो भागना भी असंभव हो गया था। तभी किसी चीज़ पर जोर जोर से प्रहार करने की आवाज़ आई। हरनाम सिंह समझ गया कि बलवाई उसकी दुकान का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। आगे चल पाने के लिए दोनों के पैर कांप रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ धीरे धीरे आगे सरकने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद पंतों को लगा जैसे आकाश में रोशनी फैल गई है। उसने मुड़कर देखा तो नाले के ऊंचे किनारे के पीछे गांव की ओर आसमान लाल होने लगा था। बंतो देखती ही देखती रह गई। देखो जी क्या है, क्या है बंतो, दुकान जल रही है और क्या है, हरनाम सिंह ने कहा। वो अभी खड़ा उसी ओर देख रहा था। थोड़ी देर तक वे मंत्रमुग्ध से आग के शोलों को देखते रहे। अपने घर में से उठते हुए शोले जरूर ही किसी दूसरे के घर में से उठने वाले शोलों से भिन्न होते होंगे, वरना वे क्यों मूर्तिवत खड़े के खड़े रह जाते और उन्हें ताकते रहते। सब खाक हो गया। हरनाम सिंह शिथिल सी आवाज में बोला, आंखों के सामने सब खाक श्याह हो गया। वाह गुरु को यही मंजूर था। उसने ठंडी सांस भरी और वे फिर चलने लगे। कुछ ही देर में वे थक कर चूर हो गए थे, पर जब से उन्हें इस बात का भास होने लगा था कि वे बच कर निकल आए हैं, तभी से दोनों पति पत्नी की आंखों के सामने अपने बेटे बेटी के चित्र घूमने लगे थे। इकबाल सिंह इस समय कहाँ होगा, उस पर क्या बीत रही होगी और जसबीर कहाँ होगी। जसबीर की उन्हें अधिक चिंता नहीं थी, क्योंकि जसबीर बड़े कस्बे में थी जहाँ उनकी जात के लोग अधिक संख्या में थे। संभव है सारी सिख संगत गुरुद्वारे में इकट्ठी हो गई हो, संभव है उन्होंने अपने बचाव का कोई साधन ढूंढ लिया हो। पर इकबाल सिंह अकेला था और अपने गांव में छोटी सी बजाजी की दुकान करता था। क्या मालूम समय रहते निकल गया हो, क्या मालूम इस वक्त हमारी ही तरह कहीं मारा मारा घूम रहा हो। सभी विचार व्याकुल करने वाले थे। हरनाम सिंह ने आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर गुरु महाराज का नाम लिया और फिर उनकी वाणी की वही शब्द दोहरा दिए, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जब पांव फटने का समय हुआ तो वे एक छोटे से झरने के किनारे पत्थरों पर बैठे थे। हरनाम सिंह इस इलाके से परिचित था। वे ढोक मुरीदपुर एक छोटे से गांव के निकट पहुंच चुके थे। रात सारी चिंता उधेड़बुन और पांव घसीटने में लग गई थी, पर पांव फटने से पहले अनायास ही जैसे मन को शांति मिल गई थी। हवा में दूर से तैरती हुई लुकाटों के बौर की गंध आई। ढोक मुरीदपुर में लुकाटों के बाग थे और उनके बीच में से झरने बहते थे। चांद का रंग पहले नारंगी लाल पड़ गया, फिर उसमें चांदी सी घुलने लगी। स्वच्छ नीलिमा आकाश में फैलने लगी। आसपास पक्षी चहचहाने लगे। मुंह धो ले बंतो, फिर जप जी महाराज का पाठ करके चलेंगे। प्रातः की सुहावनी घड़ी में हरनाम सिंह का विश्वास फिर से जैसे लौट आया था। अब जाएंगे कहाँ, बंतों ने चिंतित आवाज में पूछा। दिन भर मारे मारे कहाँ फिरोगे, दो रोटियां सेक ली होती तो कोई बात नहीं थी। दिन भर बेशक यहीं किसी पत्थर की ओट में पड़े रहते। इसी ढोक में चलकर किसी का दरवाजा खटखटाते हैं, उसके दिल में रहम हुआ तो आसरा दे देगा, न हुआ तो जो गुरु महाराज को मंजूर है। तुम इस ढोक में जानते किसी को नहीं हो। हरनाम सिंह मुस्कुरा दिया। जहाँ सबको जानता था वहाँ किसी ने आसरा नहीं दिया। सामान लूट लिया और घर को आग लगा दी। यहाँ जानने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है। उन लोगों के साथ तो मैं खेल बड़ा हुआ था। प्रातः का झुटपुटा साफ होने पर दोनों उठकर गांव की ओर जाने लगे। पहले पेड़ों का एक झुरमुट आया। शहतूत और शीशम के पेड़ थे। झुरमुट के बाहर छोटा सा कब्रिस्तान था। टूटी फूटी कब्रें छोटी बड़ी, उन्हीं के एक और किसी पीर की भी कब्र जान पड़ती थी, क्योंकि उस पर दिया टिमटिमा रहा था और हरी झंडियां लटक रही थीं। फिर खेत आए, गेहूं पक गया था, कटाई के दिन नजदीक थे। फिर सपाट छतों वाली मिट्टी के कोठे सामने आ गए, जिनके बाहर गाय भैंसें बंधी थीं। कहीं कहीं पर मुर्गियां अभी से अपने चूजों के साथ चुगे की तलाश में घूमने लगी थीं। बंतो, अगर वे लोग मारने पर उतारू हुए तो मैं पहले तुझे खत्म कर दूंगा, फिर अपने को खत्म कर लूंगा। जीते जी मैं तुझे दूसरों के हाथ में पड़ने नहीं दूंगा। तभी वे गांव के बाहर ही पहले घर के सामने रुक गए। दरवाजा बंद था। बदरंग सा मोटी लकड़ी का दरवाजा, न जाने किसका घर था। कौन लोग दरवाजे के पीछे रहते थे। दरवाजा खुलेगा तो किस्मत जाने क्या गुल खिलाएगी। हरनाम सिंह ने हाथ ऊपर उठाया। क्षण भर के लिए उसका हाथ छिटका रहा, फिर उसने दस्तक दी। अध्याय 15। गुरुद्वारा खचाखच भरा था और संगत मस्ती में झूम रही थी। बस अनमोल समय था। रागी पूरी तन्मयता से आंखें बंद किए गा रहे थे, तुम बिन कौन मेरे गोसाई। गुरुद्वारे के अंदर रोशनी पिछली दो खिड़कियों में से आ रही थी, जिनके ऊपर लाल हरे और पीले रंग के शीशे लगे थे। लकड़ी के चार खंभों के बीच गुरुग्रंथ साहब की चौकी थी और चौकी के इर्द गिर्द पीतल का कटहरा बना था। चौकी को लाल रंग के रेशमी कपड़ों से, जिस पर सुनहरे रंग की किनारी लगी थी, ढक दिया गया था, जिसका एक सिरा नीचे फर्श तक फैला था, जहाँ सफेद चादरें बिछी थीं। जगह जगह चौकी के सामने फर्श पर सिक्के, दुअनिया, इकनिया बिखरे पड़े थे। एक ओर आटे का ढेर लगा हुआ था। प्रवेश करने पर गुरुद्वारे के बाईं ओर स्त्रियां बैठी थीं। सभी ने दुपट्टों में मुंह सिर लपेट रखे थे। सभी के चेहरे दमक रहे थे। सबकी आंखों में कुर्बानी का नूर चमक रहा था। किसी किसी स्त्री की कमर से कटार लटक रही थी। प्रत्येक नर नारी का रोम रोम इस बात को महसूस कर रहा था कि सिख इतिहास की लंबी श्रृंखला में वह भी एक कड़ी है जो इस संकट के समय अपने पुरखाओं ही की भांति आत्मबलिदान के लिए मैदान में उतर रहा है। असला पिछले बरामदे में तथा ग्रंथी की कोठरी में इकट्ठा किया जा रहा था। गांव में 7 गुरुसिंदों के पास 2 नाली बंदूकें थीं और 5 बक्से कारतूसों के थे। जत्थेदार किशन सिंह सुरक्षा का प्रबंध कर रहा था। किशन सिंह पिछली जंग में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था और बर्मा की लड़ाई के दांवपेच वह अपने कस्बे के मुसलमानों पर चलाना चाहता था। सुरक्षा की कमान संभालते ही वह घर जाकर अपनी खाकी कमीज पहन आया था जिस पर सरकार इंग्लिशिया के 3 तमगे और अनगिनत रंगीन फीते लगे थे। कमीज मुचड़ी हुई थी पर इस वक्त लोहा करवाने का वक्त नहीं था। 2 बंदूकों का एक मोर्चा गली के बाएं सिरे पर एक मकान में बनाया गया था और 2 ही बंदूकों का मोर्चा गली के दाएं छोर पर। बाद में दाएं हाथ वाला मोर्चा नकारा साबित हुआ था क्योंकि उसी घर में रहने वाला सरदार हरि सिंह अपने हमसायों पर गोली चलाने से अंत तक कतराता रहा था। बाकी 3 बंदूकों का मोर्चा गुरुद्वारे की छत पर बना था और किशन सिंह स्वयं सारा वक्त छत पर कुर्सी बिछाकर बैठा रहा। बंदूकों का इस्तेमाल बस इतने तक ही था। बाकी हथियार भाले, बर्छे, तलवारें, लाठियां आदि थीं। गुरुद्वारे की पिछली दीवार के साथ यह असला सजा दिया गया था। रंग बिरंगी मखमली मियानों में बंद तलवारें एक के साथ एक दीवार के साथ खड़ी थीं। खिड़की में से धूप की किरण सीधी उन पर पड़ रही थी जिससे वे अत्यंत प्रभावशाली लग रही थीं। रोशनी की किरण भालों और बर्छों की नोकों पर भी पड़ रही थी जिससे वे झिलमिला रहे थे। कुछ एक ढालें भी थीं जो निहंग सिखों से मिल गई थीं। 2 निहंग सिख छत पर पहरा दे रहे थे। दोनों के पास अपने बर्छे थे। दोनों ने अपना अपना जामा पहन रखा था। नीला बाना, नीली पगड़ी और पगड़ी के ऊपर लोहे का चक्र और पीला कमरबंद। दोनों छाती ताने भाले हाथ में संभाले एक छत के एक सिरे पर दूसरा दूसरे सिरे पर दूर दूर तक नजरें डाले खड़े थे। कौन जाने लश्कर किस ओर धूल उड़ाते चले आए। निहंग सिंह जी, भाला नीचा कर दो। धूप में उसकी नोक चमकती है, दुश्मन उसे दूर से देख सकता है। एक बार किशन सिंह ने समझाते हुए कहा तो निहंग सिंह बिगड़ उठा। निहंग सिंह का बर्छा नीचा कभी नहीं हो सकता, निहंग सिंह ने जवाब दिया और ज्यों का त्यों भाला उठाए क्षितिज पर आंखें गाड़े खड़ा रहा। निहंग सिखों की आंखों के सामने वही पुरानी लड़ाइयों के चित्र घूम रहे थे जब लश्कर कूच किया करते थे। तलवारें चमकती थीं, घोड़े हिनहिनाते थे, नगाड़े और शंख गूंजते थे। इसी की कल्पना करते हुए उनके दिल में सिखी जोश हिलोरे लेने लगा था। 2 निहंग नीचे गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर तैनात थे। दोनों के हाथ में बर्छे थे और दोनों बड़ी मुस्तैदी से खड़े थे। दोनों ने मूछों को ताव दे रखा था और नीले बाने पर पीला कमरबंद बांध रखा था। पुराने जमाने में खालसा पीला बाना पहनकर रणभूमि में उतरता था। इस वातावरण में हर किसी की कोशिश थी कि जहाँ तक हो सके अपनी पोशाक में भी उस अखंड परंपरा का कोई न कोई चिन्ह आ सके जिनसे वे अपने अतीत के साथ और गहरे में जुड़ सकें। बिशन सिंह मनिहारी वाले ने, जिसकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी, पीले रंग का रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में खोस रखा था। बसंत पंचमी के मेले के बाद उसने पीले रंग का रुमाल अपने बेटे के सिर पर से उतारकर जेब में डाल लिया था। आज अचानक जेब में हाथ डालने पर उसे यह रुमाल मिल गया था और उसने अपनी पगड़ी में खोस लिया था। संगत में किसी किसी ने कमरबंद भी बांध रखा था पर अधिकांश लोग सलवार कमीज में ही थे। और तो और सरदार किशन सिंह ने भी तमगो वाली खाकी कमीज के नीचे पाजामा ही पहन रखा था। पर यह वक्त पोशाक की ध्यान का नहीं था। दिलों में बलिदान की भावना लहरें मार रही थीं और उस वक्त पोशाक और वर्दी का ध्यान भी आता था तो उस गहरी भावना के ही कारण जो हर पहलू से परंपरा के साथ जुड़ जाना चाहती थी। गुरुद्वारे के पिछवाड़े दो गलियां छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊंचा दो मंजिला मकान था और मुखबरों की सूचना के मुताबिक मुसलमानों ने उसी को अपना किला बना रखा था। उसी में असलाह इकट्ठा करते जा रहे थे। छज्जे के पीछे सभी दरवाजे बंद थे और ऊपर हरी खिड़कियों वाली बरसाती भी बंद थी और कोई भी आदमी छज्जे पर खड़ा नजर नहीं आ रहा था। पर इसी घर पर सबकी नजरें थीं कि पहली गोली यहीं से दागी जाएगी। सहसा गुरुद्वारे के अंदर बिजली की सी लहर दौड़ गई। सभी की आंखें प्रवेश द्वार की ओर उठ गईं, जहां गांव के मुखिया सरदार तेजा सिंह पधार रहे थे। गुरुद्वारे के चबूतरे पर चढ़कर तेजा सिंह जी घुटने टेक कर बैठ गए और फिर आगे को झुककर उन्होंने गुरुद्वारे की दहलीज को आंखों से चूम लिया। चबूतरे पर रखे उनके दोनों हाथों की उंगलियां कांप कांप उठी। देर तक तेजा सिंह अपना माथा दहलीज पर नवाए रहे, यहां तक कि उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तेजा सिंह वजद में थे, उनका रोम रोम पंथ की रक्षा के लिए निछावर था। फिर वह उठे और दोनों हाथ बांधे, गर्दन झुकाए, उनकी सफेद दाढ़ी उनकी छाती को ढके हुए थी, आकर गुरु ग्रंथ साहब की वेदी के सामने माथा नवाने के लिए झुक गए। यहाँ भी वह देर तक झुके रहे। उनका चेहरा लाल हो गया और टप टप आंसू फर्श पर बिछी सफेद चादर पर बराबर गिरते रहे। सारी संगत दम साधे देखी जा रही थी। सभी के कलेजे दिल को आ रहे थे। जब तेजा सिंह उठे तो एक लहर सीला सारे हाल में दौड़ गई। वे उठे और धीरे धीरे चलते हुए खंबे के पास आकर खड़े हो गए, जहां पर एक पुरानी तलवार खंबे के साथ रखी थी। उन्होंने कांपते हाथों से तलवार की मूठ को पकड़ा और हाल के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। यह उनके नाना की तलवार थी, जिनके पिता महाराजा रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। हाथ में तलवार उठाने की देर थी कि संगत में बलिदान भावना का जैसे ज्वार उमड़ उठा, सिर झूम उठे। दरवाजे के पास खड़े युवा प्रीतम सिंह के मुंह से अनायास नारा फूट पड़ा, जो बोले सो निहाल। सारी संगत ने एक जवान होकर उत्तर दिया, सत श्री अकाल। नारे की गूंज से गुरुद्वारे की दीवारें हिल उठीं। यो नारा लगाने की मनाही थी, क्योंकि संगत नहीं चाहती थी कि दुश्मन का पता चल पाए कि गांव की सारी जनता सिख गुरुद्वारे में जमा है। लेकिन कुछ बातों पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। इस तीव्र असह्य भावना को नारे के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता था। बूढ़े हाथों ने तलवार की मूठ को पकड़ा, उसे उठाकर दोनों आंखों से चूमा तो सारी संगत ने सिसकारी भरी। प्रवेश द्वार पर खड़े निहंग का सिर दाएं बाएं झूलने लगा, सैकड़ों सिर हिलने लगे। आज फिर खालसा पंथ को गुरु के सिंहों की खून की जरूरत है, उन्होंने कांपती हुई भावोद्वेलित आवाज में कहना शुरू किया। हमारे इम्तहान का वक्त आ गया है, हमारी आजमाइश का वक्त आ गया है। महाराज का इस वक्त एक ही हुक्म है, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। तेजा सिंह के मस्तिष्क में सुनहरी धूल उड़ने लगी थी। यही मस्ती थी, यही वजह था। सभी भावनाएं एक ही शब्द कुर्बानी पर आकर केंद्रित हो गई थीं। अरदास पढ़ो गुरु के सिंहों, अरदास पढ़ो। सारी संगत उठ खड़ी हुई, हाथ जुड़ गए, माथे झुक गए, सभी कंठ मुखरित हो उठे। गुरुद्वारा गुरुवाणी से गूंज उठा। देर तक अरदास पढ़ी जाती रही। अंतिम शब्दों पर आवाज अपने आप और ऊंची हो गई। राज करेगा खालसा, या कि रहे नको। आवाज की लहरें सारे गुरुद्वारे के वायुमंडल में लहरों की तरह उठ रही थीं। अरदास खत्म होने की देर थी कि प्रवेश द्वार पर खड़े निहंग सिंह ने हाथ उठाकर कहा, उठाया और तीखी ऊंची आवाज में, यहाँ तक कि उसके गले की नसें उभर आईं और आंखें बंद हो गईं, फिर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल। जवाब में संगतों ने हाथ उठाकर छाती में गहरी सांस भरकर नारे का उत्तर दिया, सत श्री अकाल। नए बलबले उठने लगे। नारों की गूंज में एकता और बलिदान की भावना और भी अधिक उग्र हो उठती है। तभी बाहर कुछ दूरी पर गगनभेदी आवाज सुनाई दी, नाराए तकबीर, और जवाब आया, अल्लाह हु अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाह हु अकबर। प्रवेश द्वार पर खड़े निहंग सिंह जी ने फिर हाथ की मुट्ठी भींची और उसे कंधों के ऊपर उठाकर नारा मारने जा ही रहे थे कि तेजा सिंह ने रोक दिया, बस काफी है, दुश्मन को पता चल गया है। पर मुसलमानों जवाबी नारे से संगतों को कुछ कुछ वस्तु स्थिति का भी बोध हुआ। हम नहीं चाहते कि दुश्मन को हमारी ताकत का पता चले, हम यह भी नहीं चाहते कि उन्हें पता चले कि सिख संगत गुरुद्वारे में इकट्ठी हो चुकी है, यह नीति की बात है। इस पर संगतों की को स्थिति का ब्यौरा देते हुए बोले, हमने कोशिश की है कि जिले के हाकिम ए आला डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर को इत्तला कर दी जाए कि मुसलमानों ने यहाँ कौन सी हरकतें करना शुरू कर दी है। रिचर्ड साहब को मैं जानता हूँ, वह बड़े ही मुनसिफ मिजाज और बड़ी सूझबूझ वाले सज्जन हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कि हाकिम ए आला तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। तरह तरह की खबरें हमारे पास पहुँच रही हैं। हमें पता चला है कि रहीम तेली के घर में असला इकट्ठा किया जा रहा है। यह भी पता चला है कि गहरे नीले रंग की एक मोटर दोपहर के वक्त शहर की तरफ से आई थी और कस्बे के बाहर फजलदीन स्कूल मास्टर के घर के सामने रुकी थी और उसमें से कुछ सामान फजलदीन को दिया गया था। इसके बाद मोटर सीधी आगे निकल गई। यह मोटर जगह जगह जाती और रुकती रही है। यह भी पता चला है कि यहाँ के मुसलमानों ने मुरीदपुर के मुसलमानों को खबर भेजी है कि असला लेकर यहाँ पहुँचें। हमने पूरी कोशिश की है कि शेख गुलाम रसूल और गांव के और मुसलमानों के साथ बात करें, पर उनका कोई अतबार नहीं है। आपने कोई कोशिश नहीं की है, यह सरासर झूठ है। सहसा संगत के अंदर से आवाज़ आई और गुरुद्वारे में सकता छा गया। यह कौन था बीच में बोलने वाला? गुरुद्वारे में बैठे लोगों के तेवर चढ़ गए। एक दुबला पतला सा युवक उठ खड़ा हुआ। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है और मुसलमानों को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। हम झूठी अफवाहें सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तैश में आ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गांव के मुसलमानों के साथ मेलजोल बनाए रखें और हत्तुल वसा कोशिश करें कि गांव में फसाद न हो। बैठ जाओ बैठ जाओ। कौम के गद्दार कौन है यह? मैं नहीं बैठूंगा भाइयों। मैं अभी भी कहूंगा कि हमें भी शेख गुलाम रसूल और गांव के ही संजीदा मुसलमानों से मिलना चाहिए। अगर शेख गुलाम रसूल नहीं मानता तो न सही, गांव में और बहुत से संजीदा मुसलमान हैं जिनके साथ मिलकर हमें गांव में अमन बनाए रखना चाहिए। अगर उन्हें मुरीदपुर से असला आ रहा है तो क्या हम लोग कहूटा से असला मंगवाने की कोशिश नहीं कर रहे? कत्ल ओ गारत कोई नहीं चाहता। कस्बे के सिख और मुसलमान आपस में मिलें और गांव में अमन बनाए रखें। मैं आज ही सुबह गुलाम रसूल और कुछ मुसलमानों से मिला हूँ। तुम वहाँ क्या करने गए थे? क्या लगते हैं वे तुम्हारे? तेरा बाप लगता है गुलाम रसूल? मुझे बोलने दो। शरारत बाहर के गांव वाले करेंगे। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस गांव में बाहर के लोग नहीं आएं। इसका एक ही तरीका है कि यहां के अमन पसंद सिख और मुसलमान मिलकर उन्हें रोकें। वे हमारे डर से असला इकट्ठा कर रहे हैं और हम उनकी डर से असला इकट्ठा कर रहे हैं। मुसलमानों का कोई एतबार नहीं है। बैठ जाओ। वे लोग कहते हैं कि सिखों का कोई एतबार नहीं है। बैठ जाओ। एक बड़ी उम्र का आदमी उठकर खड़ा हो गया और सोहन सिंह को संबोधन कर गुस्से से कांपते होठों के साथ बोला, तू कौन है बीच में बोलने वाला? तेरे होठों पर अभी तक तेरी माँ का दूध नहीं सूखा है, बड़ों की बातों में बोल रहा है। तीन चार सरदार जगह जगह पर उठ खड़े हुए थे। तुम जानते हो शहर में उन्होंने मंडी को जला दिया है। यह सब अंग्रेजों की शरारत है। सोहन सिंह की आवाज़ और ऊंची उठ गई थी। हमारा लाभ इसी में है कि फसाद न हो। सुनो भाइयों, शहर से आज कोई बस नहीं आई, रास्ते कटते जा रहे हैं। यह सारा इलाका मुसलमानी है। अगर गांव पर बाहर के लोगों ने हमला कर दिया तो तुम कहां तक उनका मुकाबला कर सकोगे? कुछ यह भी सोचो, कहूटा से तुम्हें कितनी मदद मिल जाएगी? तुम ऐठ किस बात पर कर रहे हो? थोड़ी देर के लिए गुरुद्वारे में चुप्पी छा गई। तब तेजा सिंह जी गुरुद्वारे के बीचों बीच आकर खड़े हो गए और अपनी कांपती आवाज में बोले, मेरा दिल यह देखकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि हमारे ही बच्चे गुमराह होकर ऐसी बातें करते हैं, अपने ही पंथ के खिलाफ आवाजें उठाते हैं। क्या हम फसाद चाहते हैं? मैंने खुद शेख गुलाम रसूल से कहा है। उसने दिल पर हाथ रखकर कहा कि गांव में कुछ नहीं होगा और मेरे पीठ मोड़ने की देर थी कि खालसा स्कूल पर कुछ लोगों ने हमला किया, वहां का पंडित चपरासी मार डाला गया और मुसलमान उसकी बीवी को उठा कर ले गए। यह खबर मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको इश्तआल दिलाऊं। गम और गुस्से की लहर फिर गुरुद्वारे में दौड़ गई। आपको किसी ने गलत खबर दी है, सोहन सिंह फिर बोल पड़ा। खालसा स्कूल पर हमला जरूर हुआ था, लेकिन गांव के मुसलमानों ने हमला नहीं किया। ढोक इलाही बख्श से कुछ गुंडे आए थे, पर मीरदाद हमारा साथी जो शहर से आया है वह वक्त पर पहुंच गया। उसने और गांव के दो और लड़कों ने बीच बचाव करके हालत को बिगड़ने से बचा लिया। चपरासी को केवल चोटें आई हैं, वह मरा नहीं है, और उसकी बीवी को भी भगा करके कोई नहीं ले गया, वह अभी स्कूल में मौजूद है। यह मीरदाद कौन है? एक सरदार बोला। मैंने इसे मीरदाद के साथ कहवा खाने में बैठे देखा है, न जाने आपस में ये क्या बातें करते हैं। जब मुसले हमारी औरतों की असमत लूट रहे हैं, इधर हमारे ही लड़के मुसलों से गठजोड़ कर रहे हैं। फिर उसी दुबले पतले सरदार की ओर मुखातिब होकर बोला, हमें क्या समझाते हो? मुसलों को जाकर समझाओ, क्या सिखों ने किसी को अभी तक मारा है? किसी का घर लूटा है? बड़ा आया हमें उपदेश देने वाला। हवा फिर बदल गई थी। दरवाजे पर खड़ा निहंग सिंह चलता हुआ कदम बढ़ाता दुबले पतले सरदार के पास आया और सीधा एक धौल उसकी गर्दन पर जमा दिया। बस बस, मत मारो मत मारो। पास बैठे कुछ लोग उठ खड़े हुए और निहंग सिंह का हाथ रोक दिया। ऐन उस वक्त जब यह हंगामा गुरुद्वारे में चल रहा था, मुसलमानों के मोहल्ले में मीरदाद की जान सांसत में थी। तीन कसाईयों की दुकानें साथ साथ थीं, पर इस वक्त बंद थी और कुछ लोग चबूतरों पर बैठे मीरदास से उलझ रहे थे। ओ चुप ओए, अंग्रेज को किसने देखा है? शहर में कितने ही मुसलमान हलाक हुए हैं, उनकी लाशें भी अभी गलियों में पड़ी हैं। उन्हें अंग्रेजों ने मारा है? ओए, मस्जिद के सामने खंजीर फेंका है, वो अभी अंग्रेज फेंक गए हैं। ओए ओ कुछ समझो, मीरदाद ने हाथ झटक कर कहा। अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं, इनमें इत्तेहाद हो जाता है, तो अंग्रेज़ की हालत कमज़ोर पड़ जाती है। अगर हम आपस में लड़ते रहते हैं तो हालत मजबूत बनी रहती है। वही घिसा पिटा तर्क था जिसे ये लोग रोज़ सुनते थे, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। इस तर्क का कहीं असर नहीं होता था। जा जा, सिर पर बादाम रोगन की मालिश कर, मोटे कसाई ने कहा। हमारा अंग्रेज ने क्या बिगाड़ा है? ओए, हिंदू मुसलमान की अदावत पुराने जमाने से चली आ रही है। काफिर काफिर है, और जब तक दीन पर ईमान नहीं लाएगा वह दुश्मन है। काफिर को मारना सवाब है। ओ सुन चाचा, मीरदाद बोला, राज किसका है? किसका है? अंग्रेज का है, और किसका है? फौज किसकी है? अंग्रेज की है। कसाई बोला, तो अगर वह लड़ाई रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता? रोक सकता है, पर वह हमारे मजहबी मामलों में नहीं पड़ता। अंग्रेज इंसाफ पसंद है, मतलब कि हम एक दूसरे का सिर काटें, और वह मजहबी मामला कहकर तमाशा देखता रहे। फिर वह हाकिम कैसा हुआ? इस पर मोटा कसाई बिफर उठा। सुन ओए मिर्दाद, लड़ाई हिंदू मुसलमान की है, इसमें अंग्रेज का दखल नहीं है। तू इधर बक बक नहीं कर। अगर बाप का बेटा है तो जा, इसी वक्त जा गुरुद्वारे में। तू उनको समझा कि असला इकट्ठा नहीं करें, उन्हें जाकर मना ले, वे मान जाएं, अपना असला बारूद गुरुद्वारे में छोड़कर अपने अपने घरों में चले जाएं। हम भी लड़ाई नहीं चाहते, हम भी अपने अपने घरों में जा बैठेंगे। बस मर्द का बेटा है तो जा उनसे बात कर, इधर हमारा मगज नहीं खा। तभी कसाईयों की इन दुकानों के पास ही एक छोटी सी घटना घटी। दुकानों से हटकर गली के अंधेरे हिस्से में एक टाट के पर्दे के पीछे बैठा एक आदमी इनकी बातें सुन रहा था। वह गुरुद्वारे से भेजा गया मुखबिर था। आसपास मुसलमानों के घर थे, पर इस बीच वाले घर में जिसके टाट के पर्दे के पीछे गोपाल सिंह बैठा था, बूढ़ी विधवा चंदन देई रहती थी। पिछले घर की दीवार फाँद कर गोपाल सिंह यहाँ आकर बैठ गया था ताकि मुसलमानों की योजनाओं का पता लग सके। मीरदाद और कसाईयों के बीच बातें सुनते हुए एक बार उसने टाट का पर्दा उठाया और चुपचाप गली में सरक कर साथ वाले मकान के चबूतरे के पीछे छिप कर बैठ गया। यहाँ से वार्तालाप ज्यादा साफ सुनाई देता था। घरों के दरवाजे बंद थे और गली में अंधेरा था, और उसने सोचा था कि अगर कहीं से आहट सुनाई दी तो वह झट से उठकर टाट के पर्दे के पीछे छिप जाएगा, लेकिन उसका उसे मौका नहीं मिला। उसके कान वार्तालाप पर लगे थे जब सहसा उसके पीछे आहट हुई। उसने घूम कर देखा तो गली के झुटपुटे में बगल वाले मकान में से एक आदमी चबूतरे की दो सीढ़ियां उतरकर सीधा गोपाल सिंह की ओर बढ़ा आ रहा था। सरदार जी को काटो तो खून नहीं। अंधेरे में वह दृश्य उसे बेहद भयानक लगा। वह आदमी चबूतरे पर से उतर आया था और अपने दोनों हाथ कमीज के नीचे किए हुए था, मानो अपना तमंचा या खंजर निकाल रहा हो। गोपाल सिंह मुखबिर हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और उसके मुंह से चीख निकल गई। टाट के पर्दे की ओर तो वह क्या लपकता, वह सीधा सिर पर पांव रखकर वहां से भागा। इस हड़बड़ी में वह उस आदमी से बुरी तरह टकरा गया जो कमीज के नीचे से तमंचा निकालने जा रहा था। वास्तव में टक्कर होने से पहले वह आदमी अपना आधार बंद खोलकर नाली पर लगभग बैठ चुका था। गोपाल सिंह मुखबी की नज़र उसके पोपले मुंह, घुटे हुए सिर और लगभग अंधी आंखों की ओर नहीं गई। टकराव में बूढ़ा नूर खान गली में गिर पड़ा और फिर उसके मुंह से भी चीख निकली, मारी दित्ता, ओ मारी दित्ता। यह सब पलक मारते हो गया था और बूढ़े नूर की आवाज़ और भागते कदमों की आवाज़ सुनकर कसाईयों की दुकानों पर से दो आदमी बर्छे उठाए एक साथ लपक पड़े थे। अशरफ कसाई तो सीधा भागते आदमी के पीछे भागा और जोर से अपनी लाठी फेंकी। लाठी मुखबिर को नहीं लगी, पर उसके करीब ही गिरने पर उसका साहस छूट गया और वह भी चिल्ला उठा, बचाओ बचाओ, मार डाला। तभी और लोग भी गली में आ गए। बूढ़ा नूरू अभी भी नाली के किनारे उंगड़ू पड़ा था और नाड़ा उसके हाथ में था और बिलबिलाती सी आवाज में अभी भी बोले जा रहा था, मारी दित्ता, ओ मिच्छी, मारी दित्ता। गली में से अशरफ को आवाजें लगाई जाने लगी, लौट आओ, लौट आओ, आगे नहीं जाओ, वापस आ जाओ। उस वक्त गली में खड़े लोगों में से मीरदाद आगे बढ़ा और बूढ़े नूरू को उठाने की कोशिश करने लगा। इस पर मोटा कसाई आग बबूला हो गया, देख लिया वो मीरदाद के बच्चे, नूरू को अंग्रेज ने मारा है, चला जा यहाँ से खुदा कसम, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसी वक्त चला जा, दूर हो जा, हमारी आंखों से हट जा। और मीरदाद को करीब करीब धक्के देकर वहां से निकाल दिया। न घर, न घाट, न आगा, न पीछा, अमन करवाने आया है। ओ तू है कौन, जिन्हें माँ नहीं पूछती हमारे पास चले आते हैं, मुफ्तखोर कहीं के। गले के सिरे पर मीरदाद ने मुड़कर फिर कुछ कहने की कोशिश की, पर कसाई बिफरा हुआ था, कड़क कर बोला, जा जा, निकल यहां से मर्दूत कहीं का, एक झापड़ दूंगा मुंह पर, दांत बाहर आ जाएंगे, जा अपने बाप को लचकर दे। झुके कंधे दुबला पतला मीरदाद वहां से जाने लगा। शुरू शुरू में कुछ लोग जो उसकी बात सुनते थे और हाँ में हाँ मिलाते थे, वे भी अब कहीं देखने को नहीं मिल रहे थे। यही मोटा कसाई उससे पहले हंस हंस कर बातें करता था, पर अब उसकी आंखों में भी खून उतर आया था। गोपाल सिंह मुखबिर भागता गया और चिल्लाता गया और गुरुद्वारे के नज़दीक पहुँचने तक चिल्लाता रहा। संगतों के बीच फिर उत्तेजना की लहर दौड़ गई। लोग लपक लपक कर बाहर आने लगे। कुछ देर के लिए सारा अनुशासन भंग हो गया। दोनों निहंग सिंह बाहर आ गए। छत पर खड़े निहंग सिंह सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ? गुरुद्वारे के अंदर अधिकांश लोग खड़े हो गए।